पुलिस हेडक्वार्टर में आस्तिक इधर से उधर चक्कर काट रहा था, लेकिन इस बार रजत ने कोई बड़ा हंगामा नहीं किया था, बल्कि चुपचाप आस्तिक को पुलिस स्टेशन लेकर आया था। इस बार ना तो मीडिया को खबर लगी थी और ना ही किसी और को जो आस्तिक की न्यूज़ को पब्लिश कर सके, इसीलिए जनता में कोई रोष नहीं था। आस्तिक एक कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रहा था और अपने बाल खींच रहा था। उसने अपने वकीलों को बुला लिया था और उसे पता था कि वो यहाँ से निकल भी जाएगा, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलता है आस्तिक को लगता है उसका वकील आया हुआ है और उसने चिल्लाते हुए कहा, कितना समय लग गया तुम्हें आने में। पर दरवाजे पर अरुणिमा को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अरुणिमा इस वक्त 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसका पेट बाहर आ गया था और अरुणिमा ने अपनी साड़ी के आंचल को सामने की तरफ लगाया था ताकि उसका पेट नजर न आए, और वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए अंदर आती है और आस्तिक को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, क्या बात है आस्तिक, छुट्टियाँ पसंद नहीं आईं क्या तुम्हें। आस्तिक का चेहरा गुस्से में भर गया था और वो गुस्से में अरुणिमा को देख रहा था। अरुणिमा ने उसके चेहरे पर इतना गुस्सा देखा तो हंसते हुए कहने लगी, मैंने गुस्सा पहले भी देखा है तुम्हारे चेहरे पर पहले मुझे तुमसे डर लगता था, लेकिन अब मुझे तुम पर हंसी आती है। अब देखो ना, तुम्हें हर बार पुलिस उठाकर जेल में बंद कर देती है, जैसे कि तुम कोई राजा नहीं हो बल्कि कोई भिखारी हो। आस्तिक का खून खौल रहा था, उसने गुस्से में अरुणिमा को देखकर कहा, अपनी बकवास बंद करो, क्यों आई हो यहाँ पर मेरे जले पर नमक छिड़कने के लिए, वो तुम ही हो ना जिसने मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन की है। हाँ बिल्कुल, मैंने ही तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। वो क्या है ना, मुझे तुम्हें आज़ाद देखकर ना बहुत घुटन सी महसूस हो रही थी, मैं तुम्हें वो दर्द और तकलीफ देना चाहती थी जो मुझे मिली है, इसीलिए मैंने तुम्हारे खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाया है। अब देखना, तुम इस सलाखों से कभी बाहर नहीं आ सकते हो, क्योंकि पिछली बार तुम्हारे खिलाफ जो सबूत थे उसे तुमने पैसों के दम पर झूठा साबित कर दिया था, पर इस बार तुम्हारी सारी सबूत मेरे शरीर पर मौजूद है, इसे कैसे हटाओगे। आस्तिक गुस्से में कहता है, बहुत बुरी तरह से पछताओगे तुम। अरुणिमा, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इस केस को वापस ले लो। अरुणिमा हंसती है और कहती है, बिल्कुल भी नहीं, तुमने जो किया है आस्तिक रायचंद, उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा परिवार डर डर के ठोकरे खाने पर मजबूर हो गया है, तुम्हारी वजह से मेरी माँ पागल हो गई है, तुम्हारी वजह से मेरी बहन की पढ़ाई छूट गई है, तुम्हारी वजह से मैं इस हालत में यहाँ से वहाँ भटक रही हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया है। आस्तिक, मुझे पता है कि मैं तुम्हारी जितनी पैसे वाली और ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन कानून पर मुझे इतना विश्वास तो है ही कि वो मुझे निराश नहीं करेगा। आस्तिक गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, किस परिवार के लिए इतना तड़प रही हो तुम? जानती भी क्या हो अपने परिवार के बारे में? जानती क्या हो तुम अपनी माँ के बारे में? वो औरत एक नंबर की डायन है, उसने किसी दूसरी औरत का घर बर्बाद कर दिया है और तुम उस औरत के लिए मुझसे उलझने की कोशिश कर रही हो। अरुणिमा गुस्से में आस्तिक को देखकर कहती है, एक और शब्द नहीं सुनूंगी मैं अपनी माँ के बारे में, तुम्हें पता भी नहीं है कि मेरी माँ कैसी है। अरे, जिसने एक दूसरे की बच्ची को अपने सीने से लगा कर रखा है वो औरत गलत कैसे हो सकती है? मुझे नहीं पता कि मेरी माँ कितनी गलत है या कितनी सही है, लेकिन मेरी नज़रों में मेरी माँ सही है, और जब तक मेरी माँ सही है तब तक तुम गलत हो। ये कहकर अरुणिमा जाने के लिए मुड़ती ही है कि तभी आस्तिक कहता है, तुम्हारी माँ ने मेरी माँ का खून किया है, कातिल है तुम्हारी माँ, हत्यारण है तुम्हारी माँ। अरुणिमा ने जैसे ही ये सुना वो हैरानी से आस्तिक को देखने लगी, लेकिन अब आस्तिक के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ एक तिरस्कार भी था। अरुणिमा के हाथ कांपने लगे और वो फर्श पर गिरने को हुई। उसने एक कुर्सी का सहारा लिया और हैरानी से आस्तिक को देखकर कहने लगी, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ये सब सिर्फ मेरी माँ को फंसाने के लिए कर रहे हो, मेरी माँ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम विश्वास करो या ना करो ये तुम्हारी मर्जी है, पर यही सच है, आस्तिक ने अरुणिमा की आंखों में देखते हुए कहा। आस्तिक आगे कहता है, और क्या कहा तुमने कि तुम डर डर की ठोकरें खाने पर मजबूर हुई हो? नहीं अरुणिमा, मैंने तुम्हें छोड़ा जरूर है लेकिन तुम्हें बेसहारा नहीं किया है। डिवोर्स के बाद मेरी जितनी भी लीगल प्रॉपर्टीज हैं वो सारी मैंने तुम्हारे नाम करके रखी हुई हैं। मुझे पता है कि एक औरत जब अकेली अपने बच्चों को पालती है तो उसे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं नहीं चाहता था कि कल को मेरे बच्चे के लिए तुम्हें वो सब बर्दाश्त करना पड़े जो मैंने अपनी माँ को करते हुए देखा था, इसीलिए मैंने अपनी आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी तुम्हारी और बच्चे के नाम कर दी है। मैं खुद इस बारे में तुम्हें बताने वाला था लेकिन सही समय आने पर शायद वो समय यही है। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देखने लगी तो आस्तिक ने अरुणिमा की आंखों में देखते हुए कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सच्चाई पता होनी चाहिए। मुझे पता है तुमने जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है उसके बदले न्यायालय मुझे रिहा नहीं करेगा और शायद आने वाली सारी जिंदगी मैं इसी जेल में सड़ता रहूंगा, और हो सकता है कि तुम फिर कभी मुझसे मिलने भी ना आओ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सच का पता हो। मैं तुम्हारी माँ से इतनी नफरत क्यों करता हूँ ये जानना नहीं चाहोगी?
महल जाओ, मेरी माँ के कमरे में उनकी तस्वीर को हटाओगे तो उसके पीछे से एक खुफिया लॉकर मिलेगा। कोड है 4310। लॉकर खुल जाएगा और अंदर से तुम्हें मेरी माँ की एक डायरी मिलेगी जिसमें कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स हैं और उसमें उन प्रॉपर्टी के पेपर्स भी हैं जो मैंने तुम्हारी और बच्चे के नाम किए हैं। अरुणिमा के पैर कांप रहे थे। वो आस्तिक की बात सुनकर सीधे महल के लिए निकल जाती है। उसके पेट में भी हल्का दर्द शुरू होने लगा था क्योंकि उसको जुड़वा बच्चे थे और पांचवा महीना लग चुका था तो बच्चों ने लात मारना शुरू कर दिया था। अरुणिमा इतनी हताश थी कि वो जल्द से जल्द महल पहुंचना चाहती थी। महल में पहुंचकर अरुणिमा को किसी ने नहीं रोका था, लेकिन जैसे ही अरुणिमा हॉल में पहुंचती है तो सारा परिवार पहले से ही वहां मौजूद था क्योंकि आस्तिक की गिरफ्तारी की वजह जानकर यहां आ गए थे और अब सबकी नजरें सिर्फ अरुणिमा के ऊपर ही थीं।